पृष्ठ संख्या 296। प्रपत्ति भाव। दुरति दूर करो नाथ, अशरण हूँ गहो हाथ। हार गया जीवन रण, छोड़ गए साथी जन। एकाकी नैश क्षण, कंटक पथ विगत पाथ। देखा है प्रात किरण, फूटी है मनोरमण। कहा तुम ही हो अशरण शरण, एक तुम ही साथ। जब तक शतमोह जाल घेर रहे हैं कराल, जीवन के विपुल व्याल मुक्त करो विश्वगाथ। निराला की संपूर्ण गीत रचना का एक बहुत बड़ा भाग शरण गति या प्रपत्ति भाव के गीतों से संबद्ध है। भक्ति, प्रार्थना और शरणागति के गीत परिमल संग्रह से ही हमें मिलने लगते हैं। इसकी क्षीण ध्वनि उनके पहले संग्रह अनामिका की माया कविता में हमें सुनाई देता है। या की लेकर सिद्ध तू आगे खड़ी, त्यागियों के त्याग की आराधना। कहकर कवि अपनी रचनात्मकता की उस विशेष दिशा की ओर संकेतित करता है जो आगे चलकर उसके अवसाद, उसकी उदासी, खिन्नता, मृत्यु भय और आत्म जर्जरता से होती हुई अंततः शरणागति की प्रार्थना भूमि पर उसे उतारती है। आगे चलकर सिर्फ कुकुरमुत्ता और नए पत्ते में शरणागति संबंधी कोई रचना हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन आराधना और अर्चना में उसकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। अकेले अर्चना में शरणागति के लगभग 34-35 गीत संग्रहित हैं। गीत गुंज और उनके अंतिम संग्रह सांध्य काकली में भी यह प्रार्थना क्रम तिरोहित नहीं हुआ है। यद्यपि अपने जीवन के अंतिम दिनों में निराला प्रार्थना की व्यर्थता की बात भी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यह उत्कट नैराश्य के क्षणों की ही अभिव्यक्ति लगती है। अन्यथा वे अपनी कारुणिक आत्म जर्जरता में लगातार प्रभु की अमर फैंटेसी में शरण लेते हुए दिखाई देते हैं। उनके सारे संग्रहों को मिलाकर शरणागति और प्रार्थना क्रम के इन गीतों की संख्या लगभग 90 के आसपास पहुंचती है। इस तरह निराला के अंतः संगीत का पृष्ठ संख्या 297 एक बहुत महत्वपूर्ण भाग प्रभु के इसी साक्षात्कार से संबद्ध है। अंतः संगीत के पिछले अध्याय में निराला के गीतों का विश्लेषण करते हुए मैंने यह बताने की कोशिश की है कि निराला की रचनात्मकता का केंद्रीय भाव अपनी रचनाओं द्वारा निजत्व की समीपतम पहचान है। यही निजत्व की समीपतम पहचान उनके प्रार्थना क्रम के इन गीतों में भी अभिव्यक्त हुई है। अपने समकालीनों में निराला अकेले कवि हैं जिन्होंने शरणागति के इतने उच्छल और पवित्र गीत लिखे हैं। प्रभु की अमर फैंटेसी में कवि का यह करुण अवसाद शुरू शुरू में आश्चर्यजनक लगता है। ईश्वर की तर्कातीत आस्था से तर्काश्रित अनास्था में लौटने की मनुष्य की विचार यात्रा का आधुनिक साक्ष्य निराला भी अपनी रचनाओं द्वारा प्रस्तुत करते हैं, खासकर तब जब वह मृत्यु की अनंत शक्तिमंतता का सहज स्वीकार अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं। इस रूप में निराला बिल्कुल आधुनिक चेतना की कवि सिद्ध होते हैं। यही नहीं, जब वह प्रार्थना की व्यर्थता की बात उठाते हैं तब भी लगता है कि वह मनुष्य की मरणशीलता की सीमा से ऊपर प्रभु की अनाम असीम अमर अर्थवत्ता में अंततः शंका व्यक्त करते हैं। यह शंका निश्चय ही मनुष्य के आधुनिक मन की शंका है जो मृत्यु की सर्वांत विनाश लीला के ऊपर किसी भी तर्कातीत आशय में शरण लेने की बात नहीं सोच सकता। इसीलिए निराला की मृत्यु संबंधी रचनाओं की चर्चा करते हुए मैंने कहा कि मृत्यु भय की तद्धत स्वीकृति के कारण निराला आधुनिक चिंता के कवि ठहरते हैं और मृत्यु के ऊपर प्रभु या जीवन की अनश्वरता का चित्र खींचने वाले रविंद्रनाथ एक परंपराबद्ध पुराने मानस के कवि लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे निराला फिर मृत्यु के इस सहज स्वीकार से प्रभु की उसी तर्कातीत आस्था की ओर बढ़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। इस रूप में वह अतिशय पुरातन और परंपराबद्ध कवि लगते हैं। आस्था और अनास्था के बीच की उनकी यह भटकन आधुनिक मनुष्य की सच्ची ट्रेजेडी का प्रतीक है, जिसके सामने कोई विकल्प नहीं रह गया है। ना तो वह संपूर्णतः प्रभु की आस्था को पकड़कर सुरक्षित बच जाने की मना स्थिति को अपने आधुनिक मन के अनुकूल पाता है और ना ही वह तर्काश्रित अनास्था को अपनाकर अस्तित्व के रहस्यों से भयमुक्त हो पाता है। यहीं पर आकर निराला के इन शरणागति के गीतों को लेकर मन में उठा हुआ आश्चर्य समाप्त हो जाता है और उनकी वास्तविकता समझ में आने लगती है। संभवतः इसी नुक्ते नज़र से निराला की शरणागति के गीतों का महत्व समझा जा सकता है। दरअसल निराला का संपूर्ण जीवन आधुनिक मनुष्य की जीवन त्रासदी का प्रतीक है। उनके सारे निजी दुखांत आधुनिक संवेदनशील मनुष्य के दुखांतों के प्रतीक बन जाते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन की व्यक्तिगत दुर्घटनाएं झीनी पड़ती, पृष्ठ संख्या 298 हुई तिरोहित हो जाती हैं और वह एक अमूर्त दुखांत के प्रतीक के रूप में बाकी रह जाते हैं। उनकी आत्म पराजय, उनका निरंतर बना रहने वाला आत्म क्षरण, उनका नैश एकाकीपन, उनका मृत्यु भय और उनकी कारुणिक आत्म जर्जरता, ये सभी आधुनिक मनुष्य की त्रासदी का रूप ले लेती हैं, जिसे अल्बेयर कामू मनुष्य की एक कुदान कहते हैं। वैसी ही कुदान निराला लेते हैं। मृत्यु के सहज स्वीकार से, अस्तित्व विनाश से उत्पन्न अनंत भय के घटाटोप को फाड़ कर वह जितनी बार बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, शायद वह घटाटोप उन्हें फिर उसी तरह चारों ओर से घेर कर अपने अंदर बंद कर लेता है। इसी को निराला कभी घिर गए हैं मेह प्रलय के प्रवर्षण, कभी केवल छाया विशाल, कभी गुहा गर्त प्राचीन रुद्र कहकर बार बार व्यक्त करते हैं। भय की इसी अनिवार्य स्थिति से निराला प्रार्थना भूमि पर उतरते हैं। शरण में मरण का मिट गया महादुख, मिला आनंद पथ पाथ संस्कृति सजी। निराला के इन प्रार्थना गीतों का गहराई से अध्ययन करने पर उनमें एक सूक्ष्म विकास क्रम परिलक्षित होता है। प्रारंभ में यह प्रार्थना एक प्रकार से अपने अंधकार से मुक्ति के लिए है। दैन्य और हल्की करुणा की शुरुआत यहाँ दिखाई देती है। यह प्रार्थनाएं बहुत कुछ अमूर्त हैं। कवि अपने आराध्य को टटोलता सा नजर आता है, उसकी आस्था स्पष्ट नहीं दिखाई देती। सांसारिक असफलता की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही ये प्रार्थनाएं प्रकाश में आई हैं। इनमें टूटकर शरण खोजने का भाव अभी उतना प्रबल नहीं है। इसके अतिरिक्त ये प्रार्थनाएं अपनी ओजस्वित काव्य गरिमा को पुनः पुनः उपलब्ध करने के लिए भी की गई हैं। फिर धीरे धीरे उत्तरोत्तर शरणागति की गहनता शुरू होती है। यहाँ से आत्म जर्जरता और दैन्य का प्रावल्य दिखाई देने लगता है। फिर पूर्ण शरण की प्रार्थनाएं बार बार लौट लौट आती हैं। अंततः कवि को यह अनुभव होता है कि उसकी प्रार्थनाएं सफल हुई हैं। इस अनुभूति के बाद उसका दैन्य, उसकी आत्म जर्जरता, आत्म क्षय की निरंतर बनी रहने वाली उसकी कारुणिक अनुभूति धीरे धीरे तिरोहित होने लगती है और प्रभु की अनंत कृपा के प्रभाव से उत्पन्न अपने मन की स्नेहिल पावनता और निष्काम भाव का बड़ा ही भावमय वर्णन वह करता है। इसी भूमि पर आकर निराला परंपरागत भक्ति के विचार से अलग हो जाते हैं। अपनी मुक्ति के पश्चात वह उस अखिल कारुणिक मंगल का प्रसार सारी प्रकृति में, सारे जीवन और जगत में देखते हैं। यही नहीं, वह अपनी प्रार्थनाओं में भी बार बार वरदान और आशीष सिर्फ अपने लिए ही नहीं मांगते, वह सारे जाति जीवन की निरामयता के आकांक्षी हैं। जहाँ वह पृष्ठ संख्या 299 सिर पर स्वर्ग शीश टूटने की बात भी करते हैं, वहाँ भी सिर्फ वे अपने को ही आशीष युक्त नहीं देखते, बल्कि संपूर्ण प्रकृति में उसका अनंत प्रसाद देखते हैं। इस प्रकार निराला अपने इन प्रपत्ति भाव के गीतों में भी दैन्य, आत्मक्षय, भय और कारुणिक जर्जरता से पुनः आस्था, विमुक्ति, आत्मशक्ति, निष्कामता और निःसंशय मनः स्थिति की ओर लौटते हैं। निराला की प्रारंभिक प्रार्थनाएं मुख्यतः अपने अंधेरे से मुक्ति की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन यहाँ भी कवि मात्र अपने निजी अंधकार से ही मुक्ति की इच्छा नहीं व्यक्त करता। वह अंधकार, वह नैराश्य जो संपूर्ण प्रकृति, सारे मानव जीवन, सारे राष्ट्र के जीवन को आच्छादित किए हुए हैं, उससे भी मुक्ति का इच्छुक है। वह सिर्फ अपने को ही नहीं, सारे संसार को ज्योतिर्मय देखना चाहता है। वह अपने निजी नैराश्य के अंधेरे में इतना टूटा हुआ नहीं है कि शेष सब कुछ से अपने को काट ले। इसीलिए शुरू में वह अक्सर सूर्य और उषा की प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है। परिमल की प्रार्थना एक भर देते हो और विस्मृत भोर में प्रकाश की यही प्रार्थना व्यक्त हुई है। इसमें प्रार्थना के आवाहन और आशीर्वाद की प्राप्ति, ये दोनों अनुभूतियाँ व्यक्त हुई हैं। इन प्रार्थनाओं में कवि का भीतरी और बाहरी अंधकार एकम एक हो गया है। इसीलिए मुक्ति की यह प्रार्थना निजी और सार्वजनिक दोनों ही है। एक, जग को ज्योतिर्मय कर दो, प्रिय कोमल पद गामिनी, मंद उतर जीवन मृत तरु तृण, गुलमों की पृथ्वी पर हंस हंस निज पथ अवलोकित कर नूतन जीवन भर दो। जग को ज्योतिर्मय कर दो। दो, भर देते हो बार बार प्रिय करुणा की किरणों से, क्षुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो। अंधकार में मेरा रोदन सिक्त धरा के अंचल को करता है क्षण क्षण, कुसुम कपालों पर वह लोल शिशिर कण, तुम किरणों से अश्रु पोंछ लेते हो, नव प्रभात जीवन में भर देते हो। पृष्ठ संख्या 303। जीवन की गति कुटिल अंधतम जाल, फंस जाता हूँ तुम्हें नहीं पाता हूँ प्रिय, आता हूँ पीछे डाल। रश्मि चमत्कृत शरण अलंकृत नव प्रभात, हरित ज्योति जल भरित सरित सर प्रखर प्रपात, बढ़ जाता प्रतिश्वास शब्द गति से उस ओर जहाँ हाय, केवल श्रम केवल श्रम केवल श्रम, कर्म कठोर केवल अंधकार, करना वन पार मुझे फेर दो प्रभो, हेर दो इन नयनों में भूला भोर। यह पहली बार प्रभु संबोधन निराला की कविता में आया है। कवि अपने नेत्रों के सघन अंधेरों को फिर से प्रकाश से उद्भासित करने की प्रार्थना करता है। जीवन के कुटिल अंधतम जाल में वह बार बार घिर जाता है। उसे मालूम है कि इस अंधेरे से बाहर एक सुनहला नया प्रभात भी है। नदी तालाब झरने हरे भरे जल से लबालब भरे हुए हैं। कवि इस कर्म संकुल संसार में बार बार इस प्रकाश को पीछे छोड़कर कठोर श्रम और असफलता के अंधेरे वन की ओर चला जाता है, जहाँ केवल हाय हाय मची है। दुख विनाश मृत्यु और कर्म संकुलता का घनघोर अंधेरा यहीं पर आकर कवि पुनः प्रकाश को लौटाने की प्रार्थना करता है। जीवन अमृत तरु तृण गुल्मों वाली माँ धरती के पग पग पर फैले घने अंधेरों को ज्योति प्रपात से नहला देने की प्रार्थना करता है। यहाँ आकर उसके और फूलों के कपोलों पर बिखरे आंसू अलग अलग नहीं रह जाते। कवि अपने अंधेरे को संपूर्ण पृथ्वी के अंधेरे से एकम एक कर देता है। उसे अंततः वह प्रकाश की किरण संपूर्ण जीवन जगत उसके संपूर्ण भीतरी बाहरी अंधेरे को आलोकित करती हुई दिखाई देती है। प्रकाश की उज्ज्वल और पवित्र अनुभूति से घनी भूत वह गदगद आतंतुष्ट और कृतज्ञ हो उठता है। उसे ऐसा नहीं लगता कि अंधेरे से मुक्ति संभव नहीं है। बावजूद इसके कि एक हल्का सा दैन्य यहाँ से उसके अंदर पनपता हुआ दिखाई देता है, अंधेरे से मुक्ति का आत्मसंतोष और कृतज्ञता ही इन प्रार्थनाओं में अधिक व्यक्त हुई है। निराला के इन भक्ति गीतों में प्रारंभ से ही यह विशेषता दृष्टिगोचर होती है। उनकी प्रार्थना निजी होते हुए भी सार्वजनिकता की ओर सदा उन्मुख है। पृष्ठ संख्या 301। अंधेरे से मुक्ति के लिए सूर्य प्रार्थना का यह क्रम परिमल तक ही सीमित नहीं रहता। आगे चलकर आराधना और अर्चना में भी सूर्य प्रार्थना के गीत दिखाई पड़ते हैं। यहाँ भी अपने स्वर संगम को पुनः प्राप्त करने के लिए की जाने वाली प्रार्थना के साथ ही संपूर्ण जीवन जगत और प्रकृति को अंधकार से मुक्त करने की प्रार्थना कवि ने की है। अंदर और बाहर दोनों की जड़ता, नैराश्य, जर्जरता और अवसाद एक ही साथ दूर हो जाएं, यह उसकी उत्कट इच्छा है। उसके कृपा भाव की मांग किसी व्यक्तिगत मोक्ष या सरल गति से ही परिचालित नहीं है। वह इन प्रार्थनाओं में उतना विरक्त और एकाकी भी नहीं दिखाई देता, जिससे वह अपने एकांत आत्मसमर्पण द्वारा व्यक्तिगत मोक्ष की इच्छा जाहिर करे। अभी वह जीवंतता और रचनात्मक ऊर्जा से भरा हुआ लगता है, बस जैसे किसी बड़े पत्थर के सामने पड़ जाने से उसकी अबाध सृजन धारा रुक गई है। वह उसे फिर फिर से गतिवान बनाने के लिए व्याकुल है, इसलिए वह बार बार अपनी कविता को ओजस्वी बनाने के लिए अपने हृदय निकेतन को स्वरमय कर देने के लिए प्रार्थना करता है। इसीलिए वह अंधता में खोए हुए जीवन पर किरणों का उत्थानमय स्पर्श पाने को व्याकुल है। जो प्रवाह, जो गीत, जो रचना ऊर्जा रुक गई है उसे सहज प्रवाहित होने देने के लिए वरदान मांगता है। एक सविते कविता को यह वर दो, हृदय निकेतन स्वरमय कर दो। एक दिवस के जीवन में जय, जरा मरण क्षय हो निसंशय। जागे करुणा अक्षत पश्चय, काल एक को सुकरा कर हो दो। तिमिर दारण मिहिर दर्शो, ज्योति के कर अंधकारा गार, जग का सजग परसो। खो गया जीवन हमारा, अंधता सी गत सहारा। गात के संपात पर उत्थान देकर प्राण बरसो। पृष्ठ संख्या 302। क्षिप्रतर हो गति हमारी, खिले प्रतिकल कुसुम क्यारी। सहज सौरभ से समीरण पर सहस्त्रों किरण हर्षो। इसी को कभी कभी खग को ज्योति पुंज प्रात कहता है, कभी अपने लिए कविता के प्रपात के रूप में, तो कभी अविरत मारण मरण हाथ के रूप में मांगता है। इस तरह की प्रार्थनाओं में शरणागति का भाव अभी नहीं झलकता है, इसीलिए उसकी प्रार्थनाएं अभी तक एक तरह से अरूप अमूर्त हैं। सूर्य भी यहाँ परंपरागत सूर्य देवता के रूप में नहीं आया है, बल्कि वह अमूर्त प्रकाश देवता का प्रतीक ही अधिक है। प्रार्थना की इसी अमूर्त क्रम से निराला मातृ वंदना की मूर्त और उच्छल प्रार्थनाओं की ओर उन्मुख होते हैं। मातृ वंदना का यह प्रारंभ परिमल की आवाहन कविता से माना जा सकता है। यह गीत सीधे सीधे माँ काली की प्रार्थना है। निराला ने स्वामी विवेकानंद के एक गीत नाचुक तहते श्यामा का अनुवाद भी किया है, जो अनामिका में संग्रहित है। आवाहन में भी श्यामा के नाचने का ही जिक्र आया है। इस गीत में निराला ने तांत्रिक बिंबों का बड़ा ही खूबसूरत प्रयोग किया है। मेखला मुंड भैरवी भेरी, खड़ग और खप्पर धारणी काली का सजीव चित्र इस बिंबों के भीतर से कवि ने खड़ा किया है। श्यामा की प्रार्थना से संबंधित एक और गीत अर्चना में श्याम श्यामा के युगल पद के रूप में मिलता है। अंतर यही है कि यहाँ श्यामा के साथ श्याम के पदों की वंदना भी कवि ने की है। निराला के सारे संग्रहों से मातृवंदना के इन गीतों को एकत्र करने के पश्चात उनका अध्ययन करने पर मुझे उनके जनन संबोधन में बहुत विविधता मिली। यह सिर्फ बंगला की दुर्गा पूजा या शक्ति की आराधना के प्रभाव स्वरूप ग्रहण किया संबोधन मात्र नहीं है, यद्यपि यह भी सच है कि उनकी मातृवंदना संबंधी कई गीतों की प्रेरणा दुर्गा या शक्ति की आराधना से ही मिली है, लेकिन इस संबोधन के विविध रूप उनके इन गीतों में मुझे देखने को मिले। मातृवंदना संबंधी कई गीत तो सरस्वती की प्रार्थना से संबंधित हैं। कई गीत ऐसे भी हैं जिनमें भारत माता की प्रार्थना की गई है, जबकि कुछ गीतों में सरस्वती, भारती और भारत माता को कवि ने एकम एक कर दिया है, जैसा भारती जय विजय करे में। इन विविधताओं के अतिरिक्त बहुत सारे मातृवंदना के गीत ऐसे भी हैं जिनमें जननी या माँ संबोधन एकदम अमूर्त है, उसे किसी भी अर्थ में ग्रहण किया जा सकता है। जैसे अनगिनत आ गई शरण में जन जननी, प्रात तो द्वार पर माँ एक ही आशा में सब प्राण। पृष्ठ संख्या 303। हे जननी तुम तपश्चरित इत्यादि गीत। इस प्रकार निराला के मातृवंदना संबंधी गीतों को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक, दुर्गा या शक्ति की आराधना संबंधी मातृवंदनाएं। दो, भारत माता की प्रार्थना के रूप में लिखी गई मातृवंदनाएं। तीन, सरस्वती की उपासना संबंधी वंदनाएं। चार, सरस्वती और भारत माता को एकम एक मानकर की गई प्रार्थनाएं। पाँच, ऐसी मातृवंदनाएं जिनमें जनन संबोधन बहुत कुछ अमूर्त है। दुर्गा या शक्ति की आराधना संबंधी मातृवंदनाओं पर निश्चय ही बंगाल की शक्ति पूजा का प्रभाव झलकता है। आवाहन और नाचुक तहते श्यामा के रचना बंध में काफी कुछ साम्य है और निराला की कोई मौलिकता इस कविता में नहीं झलकती। यह कविता विवेकानंद की कविता की छाया लगती है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो मातृवंदना संबंधी गीत हैं उनमें भी जनन संबोधन में शक्ति पूजा की अनुप्रेरणा का होना संभव है। इस तरह के अमूर्त जनन संबोधन को दुर्गा, भारत माता या सरस्वती किसी भी पक्ष में आरोपित किया जा सकता है। दरअसल मुझे लगता है कि वह संबोधन निराला के पवित्र भावमय और दयनीय जर्जर मन की उपज है। उनके मस्तिष्क में किसी भी विशेष देवी की प्रार्थना इस संबोधन का साध्य नहीं है। वैसे निराला के भक्ति संबोधनों में जननी या अम्मा का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सारे भक्ति गीतों में लगभग 23-24 गीत सिर्फ इस जनन संबोधन से ही अभिव्यक्त हुए हैं। गीतिका के 13 भक्ति गीतों में से 11 सिर्फ मातृवंदना के ही गीत हैं। इन्हीं अमूर्त प्रार्थनाओं से शरणागति की भूमि में निराला उतरते हैं। शरणागति की उच्छल पवित्र भावना के शांत आवेश का चित्रण यहीं से इन्हीं गीतों से शुरू करते हैं। एक अनगिनत आ गए शरण में जन जननी, सुरभि सुमनावली खुली मधु ऋतु अवनी, स्नेह से पंक उर हुए पंकज मधुर ऊर्ध्वदृग, गगन में देखते मुक्तमणि बीत रे गई निश, देख लग हसी दिशि अखिल के कंठ की उठी आनंद ध्वनि, दो सार्थक करो प्राण जननी दुख अवनि को। पृष्ठ संख्या 304। दुरित से दो त्राण स्पर्धांधजन, गात्र जर्जर अहोरात्र शेष जीवन मात्र, कुंगमल गताघाण। 3 दे मैं करूं वरण जननी दुख हरण पद राग रंजित भरण, लांछना इंधन हृदय तलत जले अनल, भक्ति नत नयन मैं चलूं अविरत सबल, पार कर जीवन प्रलोभन समुपकरण। शरणागति की वही उच्छल तन्मयता इन उदाहरणों में व्यक्त हुई है, लेकिन मुक्ति और शरणागति की यह प्रार्थना भी एकदम व्यक्तिगत नहीं है। कवि प्रपत्ति भाव में डूब कर सारी दुख अवनि की परित्राण की प्रार्थना करता है, क्योंकि दुख जर्जर वह अकेले ही नहीं है। यहीं पर निराला अपने निजी दुखांतों और अपनी व्यक्तिगत विडंबनाओं को पीछे डालकर एक सार्वजनिक मुक्ति की प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। मोक्ष या प्रपत्ति उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। वह अपने साथ ही साथ सारे जीवन, सारे मनुष्यों तथा प्रकृति को मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए उनकी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं एक तरह की सार्वजनिक प्रार्थनाएं हैं। इस रूप में निराला भक्ति की उस विचारधारा से अलग दिखाई देने लगते हैं जिसमें प्रभु के कृपा भाव को भक्त की व्यक्तिगत और निजी उपलब्धि के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। निराला की शरणागत यहीं आकर परंपरा विहित शरणागत नहीं रह जाती। अपनी भयावह आत्मजर्जरता और आत्मक्षय के क्षणों की अनुभूति में डूबते हुए भी सार्वजनिक मुक्ति के प्रति उनकी इतनी सजगता आश्चर्य में डालती है। इसी रूप में यह लगता है कि बावजूद सारे दैन्य, संपूर्ण नैराश्य, गहरे कटाव और आत्मक्षय के उनका संगठित रचनात्मक व्यक्तित्व कहीं से भी विखंडित नहीं हुआ है। लेकिन यही नहीं कि निराला आत्ममुक्ति के साथ साथ इस सार्वजनिक मोक्ष की प्रार्थना भर करके चुप हो जाते हैं। वे वरदान और आशीष की इस अनुभूति का पवित्र उच्छल और भाव में चित्रण भी करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी प्रार्थना, अपनी निजी शरणागति का सार्वजनिक प्रतिफलन भी चित्रित करते हैं। उनकी शरणागति की रचनाओं में बार बार इस सार्वजनिक मोक्ष के उल्लास को अभिव्यक्ति मिली है। आगे चलकर हम देखेंगे कि उनकी अंतिम शरणागति की उपलब्धि की पृष्ठ संख्या 305। अनुभूति के बाद निराला पुराने भक्तों की तरह उस अनामय विष्णु लोक में विचरण करने का वर्णन नहीं करते, बल्कि इसी संसार को विष्णु लोक के रूप में चित्रित करते हैं। इस सार्वजनिक मोक्ष की चर्चा वह अनुभव व्यक्ति के रूप में ना करके जीवन जगत की अद्भुत ऐश्वर्य संपन्नता, उल्लास, सुख, रंगमयता, समृद्धि और आत्मतोष के रूप में करते हैं। इस रूप में निराला को भक्त तो कहा जा सकता है, लेकिन एक ऐसा भक्त जो संसारिकता से मुक्ति नहीं चाहता, बल्कि उसे और समृद्ध, पूर्ण, पवित्र और ऐश्वर्यमय देखना चाहता है, यहाँ आकर निराला ईसाई भक्तों के निकट लगने लगते हैं। सार्वजनिक मोक्ष के लिए प्रार्थना ईसाई मत की अपनी विशेषता है। लेकिन मेरे इस कथन का अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि निराला ने भक्ति संबंधी विचार ईसाई मत के प्रभाव से ग्रहण किया। दरअसल उनकी सार्वजनिक मोक्ष की चिंता उनकी निजी रचनात्मकता का ही अंग है, और चाहे वह कितने भी क्यों न टूट गए हों, उनके संपूर्ण काव्य व्यक्तित्व के संदर्भ में यह स्वाभाविक और उचित लगती है। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि ईसाई भक्तों की सार्वजनिक मुक्ति के लिए की जाने वाली प्रार्थना चेतना भी निराला की इसी प्रार्थना चेतना के निकट पड़ती है। इसीलिए निराला इन मातृवंदनाओं में अपने प्राणों के सार्थक करने की प्रार्थना करते हैं। पापों से वह सिर्फ निजी मुक्ति के परित्राण की बात नहीं करते, बल्कि सारी दुख अवन के परित्राण की चिंता उन्हें घेरे हुए है, क्योंकि लोग स्पर्धा में अंधे हो रहे हैं। पृथ्वी की जर्जरता दिनों दिन बढ़ रही है, उसका सौंदर्य, उसकी समृद्धि, उसकी सुगंधि धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। इसीलिए कवि पृथ्वी को इस पाप से मुक्ति दिलाकर उसकी समृद्धि, उसके सौंदर्य को पुनर्जीवित करना चाहता है। उसे अनगिनत जन शरण में आते हुए दिखाई देते हैं, फिर इस सार्वजनिक शरणागति के उल्लास का चित्र कवि खड़ा करता है। कीचड़ में सने हुए पंकल लिप्त मन कम की तरह स्वच्छ पवित्र हो गए। मुक्ति की मणि के प्रकाश को सभी ऊर्ध्व दृग होकर देखने लगे। नैराश्य, दैन्य और दुख जर्जरता की काली रात का अंत हुआ। दिखाएं मुक्ति के आलोक से नहा उठा और सचराचर के कंठ से आनंद का संगीत तरंगित हो उठा। आगे शरणागति की गहनता जैसे जैसे कवि में बढ़ती गई है, हम देखेंगे कि वह मोक्ष के इस सार्वजनीन उल्लास का चित्रण बार बार लौट लौट कर करता है। लेकिन जहाँ इस सार्वजनीन मुक्ति की चिंता से कवि अलग है, वहाँ उसकी कारुणिक आत्मजर्जरता ही अधिक अव्यक्त हुई है। ऐसी स्थितियों में ही मृत्यु के राग से रंजित जननी के चरणों में मरण का वरण करने की प्रार्थना वह करता है। जितने अपमान हैं, जहर है, आत्मपराजय हैं, दुख, नैराश्य, एकाकीपन और पृष्ठ संख्या 306 आत्मक्षरण है, सारी लांछना को ईंधन की तरह जलाकर कभी अपने आप को, अपने निजत्व को क्षार कर देना चाहता है। यहाँ तक कि जीवित रहने के मानवीय प्रलोभन से भी मुक्त होकर वह भक्ति रत माँ की शरण में तिरोहित हो जाना चाहता है। यह उत्कट नैराश्य के बाद की शांत निरामयता है, निष्काम वृत्ति है, जहाँ भक्ति के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यहीं आकर वह अपने नेत्रों को पावन करने की प्रार्थना करता है, जिससे उसकी दृष्टि जनन के कलुष रहित निरामय रूप का सदा अवलोकन करती रहे। वह सकल शुभ फलप्रद एक विधान की मांग करता है, जिससे उसके जीवन के अशुभ भयप्रद क्षणों का निवारण हो जाए, जिससे भय में हूँ तन्मय के निचाट अनुभव से उसे मुक्ति मिल सके। उसे मालूम है कि उसकी यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि जननी के नयनों में अपार करुणा है, अनंत दया है, असीम कृपा भाव है। चाहे मार्ग में कोई आश्रय भले ना हो, चाहे जितना बड़ा निर्दलन भय हो, चाहे जीवन में मृत्यु की निश्चयता कितनी भी व्यापक क्यों ना हो, जननी अनशरण शरणा है। वही उसे सुपथ पर ले जाएंगी, भय से मुक्त करेंगी, आत्मक्षय का शमन करेंगी, क्योंकि वहीं पर मृत्यु का भी परिशमन है, क्योंकि वही मृत्यु रूपा भी है। कवि जानता है कि जब कामना के हाथों छटपटा छटपटा कर वह मृत्यु के गहवर में उतरेगा, तो वहाँ पर भी माँ की अनंत कृपा से उसे शांति मिलेगी। उसका दुखांत अंततः परिशमित होगा। उसे इस जीवन रचना आत्मक्षय की अनंत नरक यात्रा से अंततः मुक्ति मिलेगी। एक कामना के हाथ थक कर रह गए मुख, विमुख बक कर चरण पर मस्तक झुकाकर शरण हूँ तुम मरण सरिता। दो, माँ अपने आलोक निखारो, नर को नरक त्रास से वारो, विपुल दिशावध शून्य वर्गजन, व्याधि शयन जर्जर मानो मन, ज्ञान गगन से निर्जर जीवन, करुणा करो उतारो तारो। पल्लों में रस सुरभि सुमन में, फल में दल कलरव उपवन में, लाओ चारु चयन चितवन में, स्वर्ग धरा के कर तुम धारो। पृष्ठ संख्या 307। अपनी इस अनंत नरक यात्रा से मुक्ति की उच्छल प्रार्थना के बाद उपर्युक्त प्रार्थना में कवि का परिवर्तित मनोभाव देखने योग्य है। करुणा के करों पार उतरने के बाद, आत्ममुक्ति की प्रार्थना के बाद, तुरंत कवि उस मुक्ति के आशीष का शुभ प्रतिफल चित्रित करता है। एक सार्वजनिक वरदान भी मांगता है। रस सुगंधि कलरव और सौंदर्य सब कुछ से भरी पूरी पृथ्वी मांगता है। स्वर्ग को भी इस धरा पर उतारने का आशीर्वाद मांगता है। इस तरह निराला अपनी दैन्य जर्जरता के उत्कट क्षणों में भी सार्वजनिक दुख को नहीं भूलते। यही उनकी प्रार्थना की सबसे बड़ी विशेषता है, जो उन्हें पूर्ववर्ती परंपरागत भक्तों से अलग करती है। जननी अथवा माँ के संबोधन से कई गीत उन्होंने सरस्वती वंदना के भी लिखे हैं। इन गीतों में भी यदि एक ओर अपने लिए नए स्वर का वरदान कवि ने मांगा है, तो दूसरी ओर संपूर्ण भारत के लिए नए अमृत मंत्र की प्रार्थना की है। इस तरह एक गीत भी मात्र व्यक्तिगत नहीं है, अनामिका की वीणा वदानी गीतिका की वरदे, भारती तथा सांध काकली का अंतिम गीत हाथ वीणा समासीना इसी क्रम विकास के उदाहरण हैं। जहाँ पहले गीत में कवि अपने लिए शब्द शक्ति का आशीर्वाद मांगता है, वहाँ दूसरे गीत में वही सरस्वती प्रार्थना एक सार्वजनिक प्रार्थना में बदल गई है। कवि संपूर्ण राष्ट्र के आशीष के लिए यहाँ सरस्वती की प्रार्थना करता है। तीसरे गीत में सरस्वती और भारत माता के बिंब को निराला ने एकम एक कर दिया है। यहाँ सिर्फ सर्व विजयनी माँ की अनंत विजय की कामना करते हुए उसके पवित्र सौंदर्य के चित्रण द्वारा कवि ने भारत का एक सांस्कृतिक चित्र उपस्थित किया है। वह कोई विशेष वरदान नहीं मांगता, उसे मालूम है कि माँ उस पर प्रसन्न है, उनकी कृपा उसे मिल चुकी है, उनका स्वर्ग आशीष उस पर टूटने ही वाला है। इसीलिए कवि यहाँ मुक्त तन और निश्चिंत है। वह सिर्फ उनके सौंदर्य का वर्णन करता है, उनके शुभ्र हिमतुषार मुकुट, उनके गले के धवल धारहार और प्राणों में गुंजायमान ओमकार के सर्वांत प्रसार की चर्चा करता है। एक विचित्र तथ्य यह भी है कि निराला ने अपने जीवन की अंतिम कविता भी सरस्वती आराधना में ही लिखी है। सरस्वती के इस महान आराधक ने अपने रचना जीवन का अंत अंततः सरस्वती की प्रार्थना से किया, लेकिन इस अंतिम प्रार्थना में तो दैन्य जर्जरता, आत्म पराजय और कारुणिक अवसान बिल्कुल ही नहीं है। एक शांत आत्मतोष का भाव है, मन की निरामय मुक्ता अवस्था के बीच जैसे कवि यह सरस्वती प्रार्थना करता है। इस प्रार्थना में कहीं भी आवाहन शरणागति की, बलवती इच्छा या कृपा भाव की प्राप्ति की मना स्थिति व्यक्त नहीं हुई है, बल्कि इसकी जगह माँ सरस्वती के पवित्र अनामय सौंदर्य की चर्चा भर है। जैसे उस अनंत सौंदर्यशालिनी की छवि का दर्शन कवि अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर रहा है और श्रद्धा गदगद भाव से उसे शब्दों में बांध रहा है। पृष्ठ संख्या 308। हाथ वीणा समासीना विशद वादन रत प्रवीणा, घिरे बादल गगन मंडल, तरल तारक नयन अविचल, तार के झंकृत सुकोमल, कराहता कर का सुखीना। राग सावन मनोभावन, भागिनी के भवन पावन, दीप्त नैनों की सुहावन, नाक का हिल रहा मीना। इस कविता को रूप दर्शन की संज्ञा दी जा सकती है। वीणा बजाती हुई सरस्वती की छवि का अंकन है। कवि अपने इस रूप दर्शन में भी जिस राग की चर्चा करता है वह सावन है। सावन कोई राग नहीं है, लेकिन कवि की प्रियतम ऋतु का बिंब तो राग सावन ही है। वह घिरे बादल गगन मंडल कहकर अपनी रागिनी की पृष्ठभूमि संकेतित करता है। कवि का जीवन बिंब जैसे फिर इस प्रार्थना के भीतर से लौटता हुआ लगता है। इसीलिए सरस्वती के सौंदर्य चित्रण और छवि दर्शन में भी जैसे वह ऋतु बिंबों को ही लौटता हुआ पाता है। जनन संबोधन से कुछ गीत निराला ने भारत माता की प्रार्थना में भी लिखे हैं। नर जीवन के स्वार्थ सकल भारत जय विजय करे और जला दे जीर्ण शीर्ण प्राचीन, इसी तरह के गीत हैं। इसमें माँ को मुक्त कराने और उनके सौंदर्य का वर्णन है। कवि अपने जीवन का सकल श्रेय श्रम संचित फल तथा क्लेद युक्त तन देकर भी माँ को मुक्त कराने की पवित्र प्रतिज्ञा करता है। इस तरह निराला ने जनन संबोधन को कई अर्थों में प्रयुक्त किया है। दरअसल इन प्रार्थनाओं में शरणागति का भाव अभी उतना गहन नहीं हो पाया है। ये प्रार्थनाएं अनेक रूपों में उसके अंतर मन की पवित्र इच्छाएं हैं, जो आवाहन और वरदान के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं।